हम सब आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। ये एक बहुत ही विशेष उत्सव होता है, जबकि कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ महोत्सव होता है एक वास्तविक साधक के लिए, वेरी स्पेशल ओकेजन। आज के पावन दिन में हर संप्रदाय के साधक एकत्रित होते हैं व अपने गुरु की पूजा करते हैं, गुरु पूर्णिमा पे गुरु पूजा करते हैं। श्री गौरंग महाप्रभु जगत गुरु हैं। गौरंग महाप्रभु ने आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व ये प्रथा स्वयं प्रारंभ की, नित्यानंद प्रभु के रूप में व्यास पूजा प्रारंभ की गई और आज के दिन ही व्यास पूजा की जगह हम लोग व्यष्टि गुरु पूजा करते हैं। गुरु पूजा हम विशेष रूप से आज के दिन करते हैं। वास्तव में तो हम गुरु पूजा रोज ही करते हैं, जब हम योगपीठ कर रहे हैं, अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो हम गुरुदेव की उपासना तो करते ही हैं। पर आज के दिन विशेष रूप से हमें अपने अपने गुरुदेव की उपासना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन गुरुवर्ग जो हैं वे अत्यंत कृपालु होते हैं शिष्य पे, और यदि शिष्य की चेष्टा से वो आज प्रसन्न हो जाएं तो विशेष विशेष कृपा करते हैं, विशेष कृपा। आज के दिन हमें गुरुदेव की उपासना पूजा करनी चाहिए तुलसी से, चंदन से, पुष्पों से, भेंट से इत्यादि, व साथ में हमें गुरुदेव का गुणगान सुनना चाहिए व गुणगान करना चाहिए। गुरु तो हमेशा कृपालु होते हैं, परंतु कैलेंडर में अगर हम कुछ दिन देखेंगे उस दिन पर विशेष कृपा बरस रही होती है। जैसे कि आज का दिन है गुरु पूर्णिमा, तो यदि गुरु पूर्णिमा पे हमारी सेवा चेष्टा से यदि गुरुजन प्रसन्न हो जाएं तो हमारी आध्यात्मिक जो प्रगति है वो बहुत फास्ट, बहुत तीव्र हो सकती है। एक बात हमें समझनी चाहिए, जीवन में हम सब लोग खुशी चाहते हैं, जीवन में हम सब लोग बसंत का मौसम चाहते हैं, ड्राई मौसम रहता है जीवन में, तो जीवन में बसंत आने से पहले जीवन में संत आएगा, पहले संत आएगा फिर जीवन में बसंत आएगा, अदरवाइज सब ड्राई रहेगा। शिष्य और गुरु दोनों सही होंगे तो आनंद की कोई सीमा नहीं है। गुरु कैसा हो जो शिष्य से कभी कुछ चाहता ना हो, और शिष्य कैसा हो जो गुरु को सब कुछ समर्पित करना चाहता हो। जब ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो आनंद ही आनंद होगा। जब हम शास्त्रों को ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे तो हम पाएंगे कि मन को भगवान में लगाना है, परंतु मन तब तक नहीं लगता जब तक चित्त साफ ना हो, और चित्त में अनादि जन्मों के दूषित संस्कार हैं, अनर्थ हैं, अपराध हैं। जैसे हम हमारे हमारे को खोट दिखता है भक्तों में, गुरुजनों में इत्यादि, तो ये हमारे पूर्व जन्म के अपराधों के कारण होता है, अपराधों के कारण। जो वैष्णव अपराध जो हैं, ऐसा नहीं होता केवल इसी जन्म के होते हैं, पूर्व जन्मों के अपराधों के कारण भी होता है। भक्ति इतनी शक्तिशाली है, भक्ति जो साधन का जो क्षेत्र है ये इतना शक्तिशाली है, ये हम शब्दों में व्याख्यान भी नहीं कर सकते। अब मैं एक सरल सा उदाहरण दूंगा जिससे आप कुछ अंदाजा लगा पाए। अजामिल अपने अंत समय क्या बोला? नारायण उच्चारण किया। भक्ति साधना नहीं थी उसकी, तो भी कितना विशेष लाभ प्राप्त हुआ कि यमदूत चले गए और अंत में साधना करी। तो नामाभास जैसी जो स्थिति भी होती है, एक साधारण रूप से नाम ले लिया, उसी से ही इतना लाभ प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति साधना जो व्यक्ति करता है वो कितना कितनी शक्तिशाली होती होगी भक्ति साधना, आप सोचिए। जब एक बार नाम उच्चारण से अनगिनत लाभ एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जब कोई प्रॉपर भक्ति साधना करेगा तो क्या कमी रह सकती है। तो प्रेम जो है तुरंत कैजुअल नाम लेने से इतना लाभ होता है, तो जब प्रॉपर भक्ति साधना करेंगे तो तुरंत प्रेम प्राप्त होना चाहिए कि नहीं? पर क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है? हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? भक्ति में कोई कमी है? नहीं, भक्ति तो एक अमोघ शक्ति है, उसमें एक अमोघ शक्ति है, तुरंत प्रेम प्रदान कर सकती है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे अपराध और अनर्थों के कारण। अपराध और अनर्थों के अलावा किसी में ये शक्ति नहीं है कि कोई भक्ति साधना में जुड़े उसको प्रेम प्राप्त ना हो। आप साधना में जुड़ रहे हो, आपको प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा, ये आश्चर्य नहीं है। हम सोचते हैं नहीं ऐसे ही होता होगा, ऐसा उन्हीं के साथ होता है जिनके चित्त में अनर्थ व अपराध जमे पड़े हैं। ये प्रसंग हमने आज क्यों लिया? गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पे आज के लिए आज ये प्रसंग लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हमको प्रेम चाहिए, प्रेम के लिए सबसे बड़े बाधक क्या है हमारे? अपराध व अनर्थ, नहीं तो प्रेम मिल चुका होता। अच्छा, ये अनर्थ किस प्रकार के होते हैं, किसी को मालूम है? अनर्थ भी होते हैं कुछ अलग अलग प्रकार से। कई अनर्थ होते हैं, सुकृति उठा अनर्थ, सुकृतियों से जो पैदा होते हैं अनर्थ, जैसे अच्छा काम करना चाहिए, माँ बाप की सेवा सबसे अच्छी है, संसार की सोशल वर्क करो, रिश्तेदारी में जाओ, ये कुछ करो, तो ये होते हैं सुकृति उठा अनर्थ। एक होते हैं दुष्कृति उठा अनर्थ, ये दुष्कृति गलत कार्य करने से होते हैं, गलत कार्य करते हैं फिर ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, फिर अपराध से अनर्थ उत्पन्न होते हैं, भक्ति उठा अनर्थ भी होते हैं। तो अनर्थ इतने सारे हैं, और पूर्व जन्मों के और इस जन्म के अपराध, तो ये इतने सारे होते हैं कि यदि हम स्वयं चेष्टा करें तो इसको पार पा पाना असंभव है। सारे शास्त्र जय घोष कर रहे हैं इस बात का, ऐसे पार पा पाना असंभव है। और जब तक अनर्थ और अपराध रहेंगे तब तक प्रेम प्राप्त होगा नहीं। तो समाधान क्या है? समाधान है कि ऐसी कोई शक्ति हो जो इन सारे दुर्गुणों को पार पा सके। जैसे बताया जाता है कि अगर आप क्रोध पर काबू पाना चाहते हो तो मटेरियल डिजायर्स नहीं होने चाहिए। फिर अगर आप इल्यूजन पे मोहित होते रहते हो तो सांख्य योग का ज्ञान आपको होना चाहिए, तो सांख्य योग से काटेंगे आप अपने अनर्थ को। तो अगर आप लोभी हो, बहुत ज्यादा लोभ है, तो धन के इविल्स, वी शुड डिस्कस इविल्स ऑफ मनी, इससे लोभ जाएगा। तो इस प्रकार से हर अनर्थ का एक तोड़ है। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार नारद मुनि से पूछा कि भाई आप तो कहते हो ये सनत का, ये थोड़ी सनत का, ये तो ऐसे करते करते तो पता नहीं क्या, कब हटेंगे कब नहीं हटेंगे। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये सारे नत एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए। तो नारद मुनि ने बोला उपाय है, अगर कोई साधक वास्तव में पूर्ण रूप से श्री गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो उस गुरु कृपा से सारे अनर्थ कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। देखिए गुरु जो गुरु तत्व है, ये सब तत्वों गुरु तत्व को ढंग से समझे बिना हम भक्ति में चलना तो दूर है, दूर की बात है, हम अन्य किसी तत्व को समझ भी नहीं सकते बिना गुरु तत्व को ढंग से समझे हुए। गुरु गुरु का मतलब ये हैवी, बहुत हैवी, बहुत गंभीर, बहुत गूढ़, बहुत वेट वेट वाला ये तत्व है। गुरु लघु नहीं होता। गुरु किस प्रकार से हमें गुरु को देखना चाहिए? एक तो भगवान के प्रिय पार्षद के रूप में हमें उन्हें देखना चाहिए, डियर मोस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और दूसरा भगवान के प्रकाश के रूप में भी देखना चाहिए। प्रकाश मतलब नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्री भगवान, भगवत प्रकाश। शिष्य के लिए गुरु श्री कृष्ण की कृपा रूप में मूर्ति है। हमको कृष्ण की कृपा चाहिए, हाँ, उसका मूर्तिमान स्वरूप वास्तविक साधक के लिए उसका गुरु होते हैं। एक जीवन में, एक साधक के जीवन में गुरु का सानिध्य का क्या महत्व है, ये हम उनसे जान सकते हैं जिनके गुरु इस धराधाम पे नहीं है। जब हम उनसे कभी मिलें तब वो हमारे को बताएंगे कि क्या महत्व होता है गुरु का होना जीवन के अंदर। इसलिए जब हम गुरु के साथ हों, फिजिकली या गुरु के बारे में चर्चा भी कर रहे हों, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुरु तत्व तो बहुत हैवी है, हमें लघु रूप में कोई चर्चा या वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे एक्शन से या जेस्चर से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसे थॉट नहीं होने चाहिए जो गुरु को लघु रूप में सूचक कर रहा हो, लाइटली ले रहे हो। अगर गुरु की कृपा से सारे नर चले जाते हैं तो ये भी है, अगर यस्या प्रसाद भगवत प्रसाद हो, ये तो है कि गुरु की कृपा से भगवत प्रसाद भगवान की कृपा मिलेगी, परंतु यदि गुरु अप्रसन्न होते हैं, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, तो इस जीव की कोई गति नहीं हो सकती। तो गुरु तत्व जो है ये बहुत बहुत हेवी तत्व है। जब हम गुरु के साथ में हैं तो हमें ऐसा सेवा इस प्रकार से रिलेशन रखना चाहिए कि वो साक्षात भगवान का ही प्रकाश है। इस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए। यदि हम व्यवहार में गुरु के साथ यदि हालांकि गुरु जो है हमारे गुरु पर सखी हैं, सखी मंजरी हैं, परंतु व्यवहार में हमें पूर्ण रूप से आदर सम्मान के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। यदि हम व्यवहार में कैजुअल हो जाएंगे तो भक्ति में कैजुअलिटी 100% होंगे। अगर भक्ति में सामान्यता व्यक्ति भक्त जो है प्रगति नहीं कर पाते, कारण यही है कि अनेकों जन्मों के अनर्थ हैं और जूझ रहे हैं हम अकेले, तो डिफीट होना तो निश्चित है ही है। यदि हम समझ जाएं गुरु तत्व को कि भगवान का प्रकाश है और प्रिय भक्त भी हैं, ये दो प्रकार से गुरु को देखा जाता है। यदि हम केवल प्रिय भक्त के रूप में देखेंगे तो क्या होगा, मनुष्य बुद्धि उत्पन्न होगी। मनुष्य बुद्धि मतलब कि ये हमारे समान ही मनुष्य हैं, मैं जप करता हूं ये जप करते, मैं सोता ये सोते, मैं खाता ये खाते, मैं स्नान करता वो स्नान करते। तो जब इस प्रकार से अगर हम गुरु तत्व को यदि केवल प्रिय भक्त के रूप में देखेंगे तो क्या होगा, मनुष्य बुद्धि उत्पन्न होगी। मनुष्य बुद्धि उत्पन्न होगी तो क्या होगा, अपराध होंगे। अपराध होंगे तो हमारा क्या अधोपतन सुनिश्चित है। फिर हम जितने मर्जी साधन कर लें, फिर साधन करने साधन करके प्राप्ति कुछ नहीं होगा और नुकसान ही होगा, क्योंकि जब हम एक भगवान ने हमारा भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी, कृपा के सोर्स से हमें जोड़ दिया, और हम साधन करके भी क्या चाहते हैं, भगवान की कृपा, तो जो बोनाफाइड सोर्स है हमें जोड़ के अगर हम अपने प्रयास से कृपा लेने का प्रयत्न करेंगे तो भगवान की नजर में भगवान की कृपा के हम कभी पात्र हो नहीं पाएंगे। जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो जैसे हम अर्चन करते हैं, योगपीठ करते हैं, तो ये होती है सामान्य सेवा। गुरु की दो प्रकार से सेवा है, एक विशेष रूप से सेवा और एक सामान्य रूप से सेवा। अगर हम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे को विशेष सेवा करनी होगी, गुरु की तो हमारे को विशेष कृपा प्राप्त होगी, कोई विशेष चीज मुफ्त में प्राप्त नहीं होती है। और जब तक विशेष कृपा प्राप्त नहीं होगी, ये बात सुनने में छोटी है पर एक काम बड़े बड़े कर सकती है, और हम अगर हम ये ना समझें तो हमारा जैसे कहते ना कभी भी हम ऊपर उठ नहीं सकते हैं। अकेले जीव माया से जूझते जूझते जन्म पे जन्म गंवा रहा है, परंतु शरणागति नहीं करते भगवान के प्रतिनिधि को, यही कारण है कि भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। अगर कोई मेरे से पूछे कि धर्म के क्या अंडर, धर्म के एक शब्द में बता दो क्या मतलब क्या है धर्म का, भक्ति का, एक शब्द में सिर्फ क्या है वो शब्द, एक शब्द धर्म का, बस शरणागति समर्पण, एक एक शब्द, वन वर्ड आंसर है सारी प्रॉब्लम का, वन वर्ड आंसर समर्पण। समर्पण तब होगा जब पूर्ण श्रद्धा होगी। थोड़ा संशय होना, थोड़ा श्रद्धा होना, ये ऐसे तो कभी गति गाड़ी चलती नहीं है, फिर हम कहीं भी नहीं पहुंचते। हमें भाई समझ आना चाहिए जब हम प्रमाणिक परंपरा में जुड़ते हैं और एक बार हम अपना हाथ पकड़ाते हैं तो हाथ को पकड़ा के कभी फिर हटाने का हमारे पीछे हट रहे हैं, तो ये सब दोबारा सोचेंगे तो कभी भक्ति में कभी प्रगति नहीं हो पाएगी। और समर्पण होता है पूर्ण श्रद्धा पे, नहीं तो समर्पण नहीं है। और श्रद्धा का क्या मतलब है, यद्यपि अमर गुरु शुंदी बाड़ी जाए तथापि अमर गुरु नित्यानंद राय, ये है समर्पण की परिभाषा। तो वन वर्ड आंसर है धर्म का और समर्पण। कोई बोले कि सबसे बड़ी साधना क्या है, क्या है सबसे बड़ी साधना? समर्पण। सबसे बड़ी साधना क्या है? साधना ये नहीं है माला पकड़ लेना या सिर्फ रीडिंग कर लेना या धाम में बैठ जाना। समर्पण। समर्पण क्यों? यदि समर्पण नहीं है तो क्या है? अहंकार। मैं अपने बल पे माया को पार पा जाऊंगा, पार पा जाऊंगी, कोई नहीं पा पाया, मैं पा जाऊंगा। इसी को गीता में बताया गया है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। वो मानता है कि अहम, मैं पार कर सकता हूं चीज, मैं। तो सबसे बड़ी साधना क्या है? समर्पण। इस ओर हमें चेष्टा करनी चाहिए। एक बात मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, ये इस ओर हम क्यों प्रगति नहीं कर पाते? क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास कोई इस क्षेत्र में प्रगति करने की चेष्टा नहीं करता, वो माहौल ही नहीं है। माहौल क्या है कि सभी इंडिपेंडेंट है। अब बहुत गंभीर बात है ये, इसलिए हम सबको ऐसे देखते हैं, हम भी वैसे ही हो जाते हैं। परंतु इसके बिना कोई गति नहीं है। चीज तो एक ही ठीक है, प्रॉपर समर्पण होना। अगर कोई नहीं कर रहा या कोई भी नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम किसकी है? उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है। तो क्योंकि ये चीज रेयर है इसलिए हमारे को लगता है पता नहीं है ये इतनी जरूरत है भी सही कि नहीं। सभी इंडिपेंडेंट चल रहे, मैं भी इंडिपेंडेंट चल रहा। इससे सबसे बड़ा खतरनाक जो खतरा मेरे को लगता है, जो सबसे बड़ा जो चीज डिवास्टेशन लाता है, जैसे आप लोग अभी पुराने लोग हो, लेक्चर देते हो, लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो यदि आप में जो अगर इस प्रकार की भावना होगी इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी, तो आपके आने वाले लोगों में क्या होगा? इसी प्रकार के गुणों का आविर्भाव होगा। सोच लो, अपना तो हमारा नुकसान हो ही रहा है, दूसरे का भी क्या होगा? पूरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये तत्व को ना समझने की वजह से प्रीचिंग तो क्या ठीक होगी, लोगों की लाइफ खराब कर रहे हैं, अपने आचरण द्वारा लोगों की लाइफ खराब कर रहे हैं। सोचते हैं इस बात का कितने गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ऐसा नहीं कि हमारे को एक को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक की खराब नहीं है, सब लीडर हैं, वो अपने आचरण द्वारा सिखाएंगे। देखो कभी शरणागत नहीं होना चाहिए। मैं कांप गया था इस बात को, मैं कल से सोच रहा हूं इस बात को, ये कितना खतरनाक है, ये चीज इतना खतरनाक है। आप इमेजिन कर सकते हो इस बात का? आप सोच भी नहीं सकते सब क्या करेंगे। अगर हम एक क्षण भी गलत कार्य करते हैं, ना ही कश्य क्षण जातो तिष्ठते कर्म कृत, एक क्षण भी गलत कार्य करते हैं तो क्या लेना पड़ता है हमें? विकार, बुरा परिणाम हमारे को मिलेगा। ये सोचो, अपने लिए गलत कार्य करें तो भी परिणाम मिलेगा। जो हम सामूहिक रूप से गलत कार्य करवाएंगे लोगों को, इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी और बिल्कुल रॉन्ग वे ऑफ भक्ति, तो उससे हमारे क्या क्या परिणाम मिलना चाहिए सोचिए। मैं तो कांप जाता हूं कई बार ये बात सोच के। जो लीडर्स हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो गुरु का ही रोल कर रहे हैं, समझ लो कि रिप्रेजेंटिंग गुरु ओनली, रिप्रेजेंटिंग इंटायर परम, रिप्रेजेंटिंग कृष्णा। तो हमारे आचरण पर डिपेंड है कितना कुछ, जितना हमारी निष्ठा होगी समर्पण में उतना ही हम वही कल्चर क्रिएट करेंगे, बिल्कुल वही कल्चर क्रिएट होगा। कई बार हम जब समर्पण करते हैं या हम कुछ अर्पण करते हैं तो हमें उस समर्पण का भी अहंकार आ जाता है, मैं तो समर्पण कर दिया। समर्पण वास्तव में वो समर्पण है कि समर्पण शब्द भी याद ना रहे, उसे समर्पण कहा जाता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है महाराज रघु के चरित्र में। रघुवंशी, कौन है रघुवंशी? रघुवंश में कौन जन्म लिए थे? चंद्रवंश में कौन लिए थे जन्म? चंद्रवंश में कौन लिए थे जन्म? रघुवंश में कौन जन्म लिए थे? जो रघु है, रघु महाराज, रघु ने एक यज्ञ किया था बहुत बड़ा। यज्ञ के अंत में क्या करना होता है? सब कुछ छोड़ देना होता है, संसार, राज्य भी, संसार भी, सब कुछ, और बस कोपिन पहन के भिखारी का जीवन, भीख मांग के जीवन करना होता है। उन्होंने वो यज्ञ किया सफलतापूर्वक, उसका संसार छोड़ दिया। महाराज रघु की बात की जा रही है, संसार छोड़ दिया और सारी प्रजा में उनका गुणगान, ये देखो ये राजा हैं, इतने महान राजा हैं, सब कुछ को मलवत त्याग दिया इन्होंने, तारीफ ही तारीफ हो रही है। तो ये भिखारी बने हुए वेश में थे, ये ऐसे ही पांच लोग तारीफ कर रहे थे, वहां पहुंचे, खड़े हो गए, सुन रहे थे। इन्होंने बोला, भाई तुम तारीफ क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने बोला, सब कुछ त्याग कर दिया, इतना बड़ा राजा, तुम्हारा राजा ने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। कहते, काम कैसे नहीं किया बड़ा, पूरा राज्य त्याग दिया। कहते, कोई काम नहीं, कुछ नहीं त्यागा उसने, सारी दुनिया को क्या दिख रहा है कि राज्य त्यागा है, वो सब यज्ञ किया, उसका सब छोड़ दिया। उन्होंने बोला, कुछ नहीं त्यागा। कहते, सिद्ध करो कैसे नहीं त्यागा, जब वो पैदा हुआ था क्या लेके पैदा हुआ था? खुद ही बोल रहे हैं अपने बारे में, अपने बारे में ही कंडेम कर रहे हैं आप, क्या लेके पैदा, क्या त्याग किया उसने, था क्या उसके पास त्याग करने के लिए? तो यही हमको समझना है, हमारे पास कुछ है ही नहीं त्यागने के लिए। समर्पण वो जो करने के बाद समर्पण शब्द भी याद ना रहे, ये याद रह जाए कि मैंने त्याग कर दिया, तो वो त्याग किस काम, तुमने त्यागा कहां? अभी तुम्हारे साथ चल रहा है सब कुछ मन के अंदर, त्यागा कहां तुमने? या तुमने बोलो कि भाई, रोज बोलो किसी को, मैंने पिज्जा त्याग दिया, मैंने पिज्जा खा। अरे कब त्यागा तुमने फिजिकली, और है कहां पे? तुम्हारे मन की नगरी में सिंहासन पे निवास कर रहा है पिज्जा। उसी प्रकार से रघु ने अगर संसार त्याग दिया, राज्य त्याग दिया, वो भाव अगर उनके मन में रह जाए कि मैंने मैंने राज्य त्यागा है, अहम, तो समर्पण नहीं है। सब कुछ अर्पण, सब कुछ समर्पित करने के बाद भी ऐसा कभी लगना नहीं चाहिए मैंने कभी कुछ किया। हम छोटी सी बात करते हैं, हम उसकी एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। भक्ति जो है ये बहुत गूढ़ विषय है, बहुत गूढ़ विषय है, जन्मों जन्मों के अनर्थों को पार पा पाना है। सारी गूढ़ चीजों को समझना होगा और उनका संग करना होगा जो समर्पित है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, अगर हमें समर्पण करना, कैसे करेंगे? समर्पित व्यक्ति का संग कर, दूसरा कोई उपाय नहीं। सबका संग करना बहुत खतरनाक होता है, चाहे हमारे आपके मेंबर हो, चाहे कोई भी हो। मैं स्पष्ट ब्लंट बोल रहा हूं, संग केवल उन्हीं का करें जो समर्पित है। बाकी गुड वर्किंग रिलेशनशिप आप सबसे रख सकते हैं, या मैं कहूंगा रखने चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप ये सोचें कि सबसे अच्छा संबंध हो जाएगा त्रिकाल में, नहीं होगा। अपने आप को बचाएं, उसके बाद किसी से संबंध बनाएं। आपकी आप ही खराब हो जाएंगे तो संबंध बना के क्या करें? हमको यहाँ सोशलाइजिंग करने थोड़ा ना आए हैं, गप्पे मारने भक्तों के साथ। बिल्कुल समर्पित भक्तों का संग करेंगे तो हमें भी वही रंग आएंगे। Birds of the same feather flock together. ये तत्व दुर्लभतम नरत्वम लोके, लोक में क्या दुर्लभ है? नरत्वम, नर, नारी जो तनु है वो दुर्लभ है। उसके बाद समर्पण अपि सुदुर्लभ, नर तो दुर्लभ है ही है, मनुष्य देह, उसका समर्पण जो है वो सुदुर्लभ है। और ये किन के साथ रह, ये तत्व इतने गूढ़ हैं, जब तक व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहा जीवन में ये बोल भी नहीं सकता इन विषयों के ऊपर। जो समर्पित व्यक्ति नहीं है वो बोल नहीं सकता इस विषय में, समझाना तो दूर की बात है। तो यदि हमारे को कोई समझाने वाला व्यक्ति नहीं, तो हमें अति भाग्यशाली समझना चाहिए अपने को। इसलिए दीक्षा और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, कृष्ण की ही शक्ति है, हमारे कृष्ण तक लेके जा रहे हैं, एक मंत्र के द्वारा एक शिक्षा के द्वारा। शिक्षा नहीं मिली, मंत्र मिल भी गया तो फायदा क्या मंत्र का? मंत्र करना कैसे है, किस कॉन्शियसनेस में करना है? बोल तो रहे हैं गुरुद्वारे स्वाहा, बोलने से हो जाएगा क्या? अब बोल दो कल को मैं टाटा बिरला बन गया, बोलने से बन जाओगे क्या? कल बोलो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बोलने से हो जाएगा क्या? ऐसे कुछ नहीं होता, बोलने से कोई काम नहीं होता, बोल गए टू फील इट। तो यदि हमारा कोई तत्व ज्ञानी विद्वान समर्पित भक्त का संग मिल जाए, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। इसे मैंने बताया, जिनके गुरु नहीं हैं, उनसे पूछो गुरु का महत्व क्या होता है, तब पता चलेगा। और जिनके गुरु परम गुरु दोनों हों, उनका संग मिला हो, दर्शन मिले, स्पर्श मिले, इससे शुभ बात एक भक्त के जीवन में कुछ नहीं हो सकती है। ये किसी को फैसिनेशन है ना, फैंटेसी वर्ल्ड हो किसी डिवोटी का, वो ही ऐसा हो सकता है। गुरुजी भी हैं, परम गुरुजी भी हैं, उनसे कथा, उनका स्पर्श, उनका संग, उनके दर्शन सब प्राप्त हो रहे हैं, उसके बाद ही हम सोचते हैं कि भक्ति इससे बेटर हमें किसी और तरीके से प्राप्त हो सके, हम कर सकता है कोई भी व्यक्ति। हाइट ऑफ फॉर्चून, अरे गुरु मिलना ही दुर्लभ, ऊपर से गुरु के साथ शिक्षा गुरु भी कोई मिल जाए वो दुर्लभ, ऊपर से सब कुछ। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। और आज के दिन जो है, हम हालांकि करते अपने व्यष्टि गुरु की पूजा है, परंतु गुरुत्व का आविर्भाव है उसको सेलिब्रेट। तो गुरुत्व का आविर्भाव जो शिक्षा देते हैं उनमें भी होता है, जो दीक्षा देते हैं उनमें। ऐसा नहीं है केवल दीक्षा गुरु इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं, शिक्षा गुरु भी इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। व्हाट इज द 247 सीसी वर्स? शिक्षा गुरु तारे जाने कृष्ण स्वरूप, शिक्षा गुरु को भी कृष्ण का ही स्वरूप जानना चाहिए। तो यदि हम अकेले समझ चुके हैं कि हम अपने बल से माया को पार नहीं पा सकते, तो हमको क्या करना चाहिए? गुरु की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? एक सामान्य सेवा और एक विशेष सेवा। विशेष कृपा चाहिए तो क्या करनी होगी? विशेष सेवा करनी होगी। तो अपने हम जीवन में देखें, क्या हम विशेष सेवा कर रहे हैं कि सामान्य सेवा कर रहे हैं? माता, अब कोई बोले कि ये तो इतना हजम नहीं होती, पर कहां पे ऐसे शास्त्रों में लिखा है? इसके बाद माता देवहूति ने ये बात बताई पद्म पुराण में, भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी कि अगर मेरे अंदर भक्ति है भगवान के प्रति, परंतु मेरे अंदर मेरे गुरु के प्रति जो भक्ति है वो भगवान से भी अधिक है, तो आप मुझे दर्शन दें। तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। विशेष सेवा में क्या होता है कि गुरु की जो सेवा है वो प्राथमिक प्राइमरी हमारा सर्विस बन जाती है, और जो श्रवण कीर्तन जो है वो सेकेंडरी बन जाता है। ये टेक्निकली हमको समझना होगा। अगर हम राधा कुंड के या कहीं पे भी जो डिवोटी जो मेच्योर नहीं उनके पास जाएंगे, वो हमेशा एक ही बात श्रवण कीर्तन को ही बोल देंगे, प्रैक्टिकल समर्पण की बात को नहीं बोलेंगे। तो हमको खुद देखना है कि हम किस प्रकार से भक्ति में जुड़ना चाहते हैं। पर एक प्रकार से जुड़ जाएं, गुरु की कृपा प्राप्त करने का एक तो उपाय है विशेष सेवा। अगर हम ये नहीं कर सकते तो एक और उपाय भी है। इसमें हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक यही उपाय, एक और उपाय भी है। क्या? कि अगर हम श्रवण कीर्तन में अष्टका लीला स्मरण में बिल्कुल विभोर हो जाएं, हमें सुदबोध ही ना रहे संसार की, तो यदि हम इसमें विभोर हैं, खुश हैं, आनंद, तो गुरु इससे परमानंदित है ही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो शिष्य को क्या चाहते हैं कि वो सुखी रहे। तो यदि वो अष्टका लीला में चिंतन में अपने आप विभोर हो पा रहा है तो बहुत खुशी की बात है, परंतु अपने जीवन को गति दोनों में से एक जगह दे दें। ऐसा ना हो कि अष्टका लीला चिंतन में भी कोई प्रगति नहीं है और विशिष्ट सेवा का भी कोई होश नहीं है। जो विशिष्ट सेवा कर रहा है वास्तव में उस भक्त के लिए तो रोज ही व्यास पूजा है, उसके लिए क्या व्यास पूजा नहीं है, क्या है व्यास पूजा में स्पेशल पूजा, वो तो रोज ही करते हैं। ऐसे भक्त के लिए होता है, जैसे शराबी व्यक्ति रोज ही दिवाली है, रोज ही शराब पीता है, वैसे ये भी शराबी होते हैं भक्त जो वशिष्ठ से लिप्सु सेवा कर, वो रोज ही इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। ये जो आज का सत्र में अगर समझ आ जाए, इससे हमारा तो कल्याण होगा ही होगा, जो हमारे से जुड़ेगा उसका हमेशा कल्याण होगा। यदि ये समझ नहीं आएगा सत्र, जितने लोग हमारे जुड़े हुए हैं उनका नुकसान हो रहा है और आगे भी जो लोग जुड़ेंगे उनका भी नुकसान होगा सिर्फ। इतना डेंजरस है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, सार्थक समझें तत्व को। तो समय काफी हो चुका है आज इस थोड़ी सी चर्चा करके, आज के दिन अभी हम यहाँ पे विराम देंगे। आपका कुछ अगर इस संबंध में कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं।